أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالك سب لوگ؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. الحمد لله. جیسے لاسٹ کلاس میں کچھ گرامر کا انٹرو کے ٹائم میں تھوڑی سی وائس کا پرابلم ہو گیا تھا، تو جو ہمارا سٹارٹ کا اسپیشلی پورشن ہے جو انٹروڈکشن سے ریلیٹڈ تھا، وہ کافی سارا مس ہو گیا، تو اس کو ہم جلدی سے تھوڑا سا ریوائز کر لیتے ہیں. بس اس میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، تھوڑا سا ٹائم لیں گے اس کے لیے. کہ جیسے عربک کو اللہ تعالیٰ نے، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا، تو اس میں ہمیں جیسے اگر ہم باقی انبیاء کی ہسٹری کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزہ دیا، اور اس کے ساتھ میں جیسے مصاحف یا کتاب کی صورت میں میسج دیا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو الواح ملی، پھر ساتھ میں ان کے پاس ید بیضا تھا، پھر وہ جو ان کی لاٹھی سانپ بن جاتی تھی، الگ سے معجزہ تھا اور الگ سے میسج تھا. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس الگ سے کتاب تھی، اور جو ان کا معجزہ تھا وہ الگ سے تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے. لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے کے ساتھ معجزہ کوئی نہیں دیا. ویسے ان کے ہاتھ سے معجزات رونما ہوتے رہے، لیکن ایک جو پرماننٹ جس طرح سے تمام انبیاء کو ایک معجزہ ملا، ویسا معجزہ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میسج قرآن مجید ملا، اور یہی بہت بڑا معجزہ بھی ہے، کیونکہ اس معجزے کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک رکھنا تھا. جو پچھلے ادیان تھے وہ قوموں کے لیے نازل ہوئے تھے، تو وہ ایک قوم تک کے لیے تھے، یعنی کچھ جنریشنز تھی جنہوں نے ان کو فالو کرنا تھا دین کو، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ معجزات بھی رکھے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ معجزات میں پھر یہ چیز ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں جیسے حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی ملی تھی، تو دو چار جنریشن آئیں گی جب تو وہ اس چیز کو بلیو کریں گی، ہاں ہمارے دادا نے یا ہمارے پردادا نے اونٹنی دیکھی تھی حضرت صالح علیہ السلام کے پاس. لیکن جیسے جیسے جنریشن میں زیادہ گیپ آتا جائے گا، لوگ اس معجزے کو یعنی لائٹ لینا شروع کر دیں گے. تو کیونکہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے صدیوں تک رکھنا تھا، اور جب تک قیامت آئے گی جب تک اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو رکھنا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ویژول ہمارے لیے رکھا کہ ہر آنے والا شخص اس معجزے کے اوپر اسی طریقے کے ساتھ بلیو کر سکے. اور یہ چیز آج رہتی دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمز چھوڑ کے نان مسلمز کو بھی آج اس چیز کا اعتراف ہوتا ہے کہ قرآن مجید معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب ہے. تو اسی طریقے سے جیسے اگر ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو عربی کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی اگر ہم ٹرانسلیشنز دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹرانسلیشنز کے اندر ہمیں میسج مل جاتا ہے، لیکن جو معجزہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے وہ اس کی اپنی عربی زبان کے اندر ہی رکھا ہے کہ ہمیں مفہوم سمجھ آ جاتا ہے آیات کا، لیکن ہم جو معجزہ ہے اس زبان کے اندر، جو ایک اسلوب ہے اور جو ایک اس کی تاثیر ہے، وہ ہم جب تک عربی زبان کو سمجھیں نہ اچھے طریقے سے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے. اور اس کی مثال کے لیے آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ذات دیکھ لیں کہ ایک ایک صحابی جو ہے وہ قرآن مجید کو سنتے تھے جب، تو ان کے اوپر ایک عجب اثر آتا تھا جو اگر آج ہم دیکھیں تو ہمارے اوپر نہیں ہوتا. وہ اسی وجہ سے کہ وہ عربی زبان کو سمجھتے تھے، اور وہ میسج بھی سمجھتے تھے، اور اس کا جو معجزہ ہے زبان کا وہ ان کے اوپر طاری ہوتا تھا، اور وہ اس کو چونکہ ڈائریکٹ، اور تھے بھی وہ سارے لسانیات میں بہت ماہر تھے عربی میں، تو اس لیے ان کے اوپر یہ قرآن مجید ایک الگ طریقے کے ساتھ اثر کرتا تھا. تو یہی چیز کہ اگر ہم آج قرآن مجید کو عربی زبان کے سمجھنے کے ساتھ ڈائریکٹ ٹیکسٹ کو سمجھیں گے، اور پھر اس کے جو معجزہ ہے اس کو لینے کے لیے ہم ایفرٹ کریں گے، تو ہمارے اوپر بھی انشاءاللہ یہ ویسا ہی اثر کرے گا جیسا کہ صحابہ کرام کے اوپر کرتا تھا. اور پھر اس میں ایک اور چیز، جیسے ترجمے کو اگر ہم لیں تو ترجمے ہی کی وجہ سے، اگر ہم پچھلے ادیان کو دیکھیں تو ان میں جو انحراف آیا وہ تراجم ہی کی وجہ سے آیا، کہ ان میں کیا تھا کہ جو بھی ان کی اپنی زبان تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے مصاحف کو اتارا، तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी जो असल जबान थी वो गुम हो गई और ट्रांसलेशंस आम हो गए। और फिर आप देखें जब आपको एक जबान से दूसरी जबान के अंदर आप किसी भी चीज को ट्रांसलेट करते हैं तो वो जरूर अपना असर खो देती है उसके अंदर। वो जो एक मतलब बाज दफा उसका मफहूम भी थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, उसमें इन्हराफ आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको यहीं पे एक कुरान मजीद से इस चीज की एग्जाम्पल दूं कि हमारे पास सूरतुल बकरा में एक आया आती है, वक्तुल बुयूत मिन अबवाबिहा, कि तुम लोग अपने घरों के अंदर अपने दरवाजों से दाखिल हुआ करो। ये अल्लाह ताला ने किस मौके के ऊपर इस आयत को नाजिल किया कि जब अरब के लोग जो थे वो क्या करते थे, जब वो हज के लिए जाते थे तो वो खास तौर पर अगर उन्हें कोई काम याद आ गया है या ज्यादा रह गई है या कुछ भी उनका घर से कोई कंसर्न है तो वो वापस अपने फ्रंट डोर से नहीं आएंगे बल्कि दीवार टाप के या घर के पीछे वाले किसी दरवाजे से अंदर आएंगे। तो ये उस मौके के ऊपर आयत नाजिल हुई है। लेकिन इस जुमले के अंदर चूंकि ये मजाज है और ये एक लैंग्वेज के यानी एक इसके अंदर डेप्थ भी है अपने अंदर इसके मानी के अंदर, तो अगर हम इस जुमले को देखें तो अरब लोग इस जुमले को हर उस वक्त में इस्तेमाल करते थे जब वो किसी भी काम को नेगेटिव वे में किया जा रहा हो तो वो कहते थे वक्तुल बुयूता में अबुआ बिहा, यानी इसको सीधे तरीके से करो, तुम इसको नेगेटिव साइड से क्यों कर रहे हो, तुम इसको पॉजिटिव वे में करो। तो ये जो एक आयत है और ये जो चार अल्फाज हैं ये अपने अंदर पूरा एक मानी रखते हैं कि ये सिर्फ हज के मौके की बात नहीं है, हज में खास तौर पर और आम तौर पर अपनी तमाम जिंदगी के अंदर तुम लोग जो भी काम कर रहे हो उसको राइट वे से करो, रॉन्ग वे से ना करो, चाहे कमाई का है, चाहे पढ़ने का है, चाहे किसी भी हमारी जिंदगी के जो एस्पेक्ट्स हैं उनका है, तो उसमें हर चीज को पॉजिटिव वे में करना चाहिए। तो अब आप देखें एक अगर हम तर्जुमा पढ़ के निकल जाए तो वो जबान के अंदर वो हमें मफहूम इतना ब्रॉड नहीं देता, लेकिन अगर हम इसी में इसकी जबान की गहराई के अंदर जाएं और अरब में देखें कि ये लोग किस तरीके के साथ इस मजाज को इस्तेमाल किया करते थे तो वो बिल्कुल ही एक डिफरेंट असर रखता है अपने अंदर। फिर इसमें हमें जो हजरत उमर रदी अल्लाहु अन्हु हैं उनका एक कॉल मिलता है कि तअल्लमुल अरबिया फइन्नहा मिन दीनकुम, कि तुम लोग अरबी को सीखो क्योंकि ये तुम्हारे दीन में से है। और जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को अरबी में नाजिल किया, फिर जो हमारे शुरू की अजियाल हैं यानी सहाबा किराम का दौर, ताबईन, अतबा, ये सब हमारे अरबी जबान वाले लोग थे, तो हमारा जो शुरू में तमाम अदियान को तदवीन करने का और जो भी वर्क हुआ दीन के अंदर वो तमाम अरबी के अंदर है, तो इसलिए हमारा जो दीन है उसकी एक बुनियाद अरबी जबान है कि अगर हम इसको अच्छे तरीके के साथ समझेंगे और डायरेक्ट टेक्स्ट को समझना शुरू करेंगे तो इससे फिर हमें अपने दीन को समझने में और खास तौर पर नमाज को, क्योंकि नमाज में बाकी सब चीजें तो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हरकत में पढ़नी है, और जैसे सुभान अल्लाह या जो इस्तफ्ताह की वो कुछ स्पेसिफिक और ठीक है, लेकिन अब आवाज आना आपको शुरू हुई? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बीच में बोलना छोड़ दिया था जहां पे वॉइस ब्रेक हुई, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें जैसे अरबी जबान का जो अल्लाह ताला ने अगर हम समझना शुरू कर दें तो इसमें जैसे हम नमाजें अपनी तमाम नमाजों के अंदर जो कुरान का पोर्शन पढ़ते हैं तो उसमें जो हमारा क्योंकि कुरान मजीद एक ऐसी चीज है जिसमें हम कोई स्पेसिफिक पोर्शन हमें नहीं मिलता बल्कि हम उसको डिफरेंट चेंज करके आयात सूरतें पढ़ सकते हैं, तो ये जो कुरान मजीद का पोर्शन है इसको समझने के लिए हमें नमाजों को बेहतर करने के लिए हमारी अरबी जबान बहुत ज्यादा इसमें हेल्पफुल होती है। फिर इसके बाद हम अपनी इस पे आ जाते हैं जो हमने ग्रामर को इंशाल्लाह स्टार्ट करना है तो उसको हम बाकायदा तरीके के साथ उसका स्टार्ट लेते हैं। ओके, तो तो अरबी जबान में जैसे हम तमाम लोग उर्दू को जानते हैं, तो अरबी और उर्दू की जो मुनासिबत है वो इस तरीके के साथ कि आपको बहुत सारे ऐसे अल्फाज हैं जो आपको अरबी और उर्दू के बिल्कुल मिलते जुलते मिलेंगे। इसमें एक हमारे पास फिगर ये आता है कि 80% तकरीबन अल्फाज ऐसे हैं जो उर्दू जबान के अरबी जबान से लिए गए हैं, यानी हम उनसे फेमिलियर होते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मीनिंग है वो भी सेम होता है, यानी जिस तरीके के साथ हम उर्दू जबान में किसी लफ्ज को इस्तेमाल कर रहे हैं बिल्कुल सेम वैसे ही अरबी जबान में भी उसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बाज दफा जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है। और लेकिन क्या है कि 80% अरबी के अल्फाज ऐसे हैं जिनसे हम फेमिलियर हैं। इसमें जैसे जो मानी के चेंज होने में मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दे दूं कि इलाका हम यूज करते हैं उर्दू में कि ये पंजाब का इलाका है, ये कश्मीर का इलाका है, यानी हम किसी भी हदूद अरबे के लिए या ये एक स्पेसिफिक लैंड के लिए हम इलाका का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में। यही लफ्ज हमें अरबी में भी मिलता है लेकिन थोड़े से मीनिंग के चेंज के साथ कि अलाका तुम, जब हम अरबी में इस्तेमाल करेंगे तो उसका मतलब होता है रिलेशनशिप। मैं अलाका तू फलां के, फलां के साथ क्या रिलेशन है, तो रिलेशनशिप के लिए जब हम यूज कर रहे होते हैं तो ये अलाका तुम अरबी में इस्तेमाल होता है, लेकिन उर्दू में इसका मीनिंग चेंज हो जाता है। तो लेकिन क्या है कि हमें फेमिलियरिटी होती है कि हाँ अलाका हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें फिर इस चीज को जहन में रखने की जरूरत है कि हर वो लफ्ज जो हम उर्दू में इस्तेमाल कर रहे हैं हम उसको अरबी में सुनेंगे तो हमने फौरन से उसका मतलब अखज नहीं कर लेना कि हाँ जी जो हम उर्दू में इस्तेमाल करें वही सेम मीनिंग हम अरबी में इस्तेमाल करेंगे, नहीं बल्कि उसके मीनिंग के लिए थोड़ी सी हमें देखना है कि वो किस मानी में अरबी में इस्तेमाल हो रहा है। इसके बाद जो हमारी अरबी जबान की सबसे बुनियादी चीज है वो हमारे हुरूफुल हिजा हैं। उर्दू में भी जैसे हुरूफुल हिजा है, इंग्लिश में भी ऐसा बेस है, तो इसी तरीके से हमारे पास अरबी में भी हुरूफुल हिजा है। इसमें इन तमाम हुरूफ के साथ आप सब फेमिलियर होंगे, जैसे अलिफ बा ता सा जीम हा खौ दाल जाल रौ ज़ा सीन शीन सौद दौद वो आइन गइन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा या, ये तमाम हमारे हुरूफुल हिजा हैं। ऑलमोस्ट ये 28 हैं। इनमें फिर बाज़ोकात हमें थोड़ा सा स्कॉलर्स के ओपिनियन में इख्तलाफ मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि वो इख्तलाफ असल में किस वजह से होता है। जो इख्तलाफ है उसकी वजह हमारे पास अलिफ है कि अलिफ जो हमारा सबसे फर्स्ट लेटर है हुरूफुल हिजा का, अगर उस अलिफ के ऊपर फतहा कसरा बम्मा या सुकून आ जाए तो हम इस अलिफ को ले जाते हैं हमजा में, और जब वो किसी भी हरकत के बगैर फतहा कसरा बम्मा या सुकून इन तमाम हरकात के बगैर हो सिंपल अलिफ तो उसको हम अलिफ कहते हैं। यानी यहां पर जो हमारे पास हुरूफुल हिजा के बीच में इख्तलाफ है वो किस चीज की बेस के ऊपर है? हुरूफुल हिजा की असल में कोई डेफिनेशन नहीं है, ये तमाम वो अल्फाबेट्स हैं जो कि हम अरबी जबान में इस्तेमाल करते हैं, और ये जो आपको अरबी सीखें और सिखाएं, अरबी सीखें और कुरान समझें किताब है, उसमें आपको ये तमाम हुरूफ मिल जाएंगे। लेकिन असल में जो इनकी तादाद है उसके अंदर इख्तलाफ का पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि वो किस वजह से है। वो अलिफ जब कोई भी हरकत ले लेता है तो वो हमजा बन जाता है, और जब अलिफ खाली होता है उसके ऊपर कोई हरकत कोई सुकून नहीं होता तब वो अलिफ होता है। तो ये जो डिफरेंस है इसकी वजह से कुछ लोग इसको 28 कहते हैं हुरूफुल हिजा, कुछ कहते हैं 29। और इसी तरीके से फिर हम हुरूफुल हिजा के बाद जब सबसे पहली चीज देखें तो फतहा कसरा बम्मा है जो हमारी हरकात है, या फिर सुकून है, और इसी तरीके के साथ जब हम फतहा को डबल कर दें तो वो तनवीन बन जाती है, कसरा को डबल कसरा कर दें तो वो तनवीन हो जाती है, और बम्मा को डबल बम्मा कर दें तो वो तनवीन हो जाती है। तो इसी तरीके के साथ हमारे पास हरकात क्लियर हो गई कि फतहा कसरा दम्मा तनवीन और सुकून, ये तमाम हरकात हैं जो हम अल्फाबेट्स के ऊपर यूज करते हैं, और फिर इन अल्फाज जो हरूफ हैं उनको हम इकट्ठा करके कोई ना कोई एक लफ्ज बनाते हैं। फिर जब हम इसको आगे देखें कि जब हम हुरूफुल हिजा को आपस में ज्वाइन करके कोई भी लफ्ज बनाते हैं, तो उस लफ्ज की फिर हमारे पास आगे दो कैटेगरीज हो जाती हैं, एक बामानी अल्फाज होते हैं और एक बेमानी अल्फाज होते हैं। इस वजह से अगर मैं आपको उर्दू में एग्जाम्पल दूं, चाय वाय खाना वाना, और इस तरीके से पीना वीना, तो ये इसमें जो बामानी अल्फाज है वो पीना खाना चाय है, लेकिन ये जो वाय और वाना ये सब बेमानी अल्फाज है। तो हमने जो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा इंशाल्लाह भी, उसमें हमने तमाम बामानी अल्फाज को देखना है। तो हमारे पास जो बामानी अल्फाज होते हैं उनको अरबी में हम कलेमा कहते हैं, यानी जो भी कोई मीनिंगफुल वर्ड होगा हमारे पास उसको हम कलेमा कहेंगे, और इसी कलेमे से हम इब्तदा करेंगे और इसी को हम पढ़ना शुरू करेंगे, सीखना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। फिर अगर हम कलेमा देखें कि हमने इस चीज को डिसाइड कर लिया कि हम जो भी अरबी जबान के जो बामानी अल्फाज हैं उनको हमने पढ़ना है सीखना है, तो इसमें फिर हमारे पास अगर हम अरबी जबान में देखें तो कलेमा को फिर तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक इस्म, फेल और हर्फ। यानी जो भी आपको कलेमात मिलेंगे अरबी जबान में उसको या तो आप इस्म की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं, या आप उसको फेल की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं, और या फिर आप उसको हर्फ की कैटेगरी में लेके जा सकते हैं। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जैसे इस्म है, हम इन तीनों की एक बस उसको देखेंगे पहले कि इन तीनों का क्या मतलब है, फिर हम इस्म के ऊपर जाएंगे और उसको इंशाल्लाह डिटेल के साथ पढ़ना शुरू करेंगे। इस्म में जैसे किसी भी चीज का नाम आ जाता है, जैसे आमतौर पर कहा जाता है कि आपका इस्म गिरामी क्या है, तो उसमें आप नाम पूछ रहे होते हैं, तो इस्म में किसी भी चीज का नाम आ जाता है। फिर फेल में क्या होता है, फेल में कोई भी काम करना या होना उसका हो रहा होता है, किसी भी लफ्ज में आपको जब कोई काम का करना महसूस हो रहा हो कि इस लफ्ज के अंदर काम किया जा रहा है, और एक खास चीज आप इसके साथ लिखेंगे अपने नोट्स में, वो क्या कि जमाने का होना जरूरी है। फेल में कोई काम भी हो रहा है लेकिन उसके साथ जमाना जरूर पाया जाएगा, यानी या तो वो चीज जो भी काम है वो पास्ट में हो रहा होगा या फ्यूचर में हो रहा होगा और या फिर प्रेजेंट में हो रहा होगा, तो इन तीनों में से कोई एक जमाना उस लफ्ज के अंदर जरूर पाया जाएगा, तभी वो फेल की कैटेगरी के अंदर शामिल होगा। फिर हमारे पास थर्ड वन जो आ रहा है वो हर्फ आ रहा है, और ये हर्फ हुरूफुल हिजा से थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमें उर्दू में अगर हम देखें तो हमारे पास पर, में जो प्रपोजिशंस हैं ये सब हमारे पास हुरूफ की कैटेगरी में आते हैं, और इसी तरीके से हमारे पास अरबी में फी होता है, मिन है, मता है, ये सब हुरूफ है। तो असल में आप इस्म या फेल को यानी कोई भी अगर आपके पास इस्म आ रहा है या फेल आ रहा है तो आप उसको अकेला लफ्ज समझ सकते हैं उसका, जैसे अगर किसी का नाम है तो आपको पता चल जाएगा हाँ ये इससे नाम मुराद है, फेल में भी आपको फेल का पता चल जाएगा, लेकिन हर्फ जो है वो अकेला कभी भी अपना मीनिंग क्लियर नहीं कर सकता जब तक कि वो किसी सेंटेंस के अंदर ना आए। ठीक है, फिर इसमें हम अगर इस्म को देखें तो हमारे पास इस्म में क्या चीज आती है कि जो नाम है उनको हम देखें कि किसी भी शख्स का नाम हो सकता है, चीज का नाम हो सकता है, जगह का नाम हो सकता है, सिफत का नाम हो सकता है या काम का नाम हो सकता है। ये जो डेफिनेशन है ये आपको आपकी किताब में मिल जाएगी, और इसमें जैसे आप अगर किसी शख्स का नाम देखें तो जईदुन, मरियम, ये जो सब नाम है ये किसी शख्स का नाम के अंदर आ जाते हैं, और इसमें एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं कि बहुत सारे अस्मा ऐसे हैं, यानी तकरीबन 85% अस्मा ऐसे हैं जो कि तनवीन के साथ आते हैं। तो आपके लिए एक बहुत बड़ा ये क्लू हो गया है कि जब भी आप कुरान मजीद में इसको सर्च आउट करना शुरू करेंगे तो सिंपली आप ये भी देख सकते हैं कि जिसके ऊपर तनवीन है, जिस भी वर्ड के एंड में आपको तनवीन मिल रही है, फतहा, कसरा या बमा तनवीन, तो वो तनवीन आपको बता देगी कि हाँ ये लफ्ज़ जो है ये इस्म की कैटेगरी में आ रहा है। लेकिन बाज़ एक्सेप्शन हमारे पास इस तरह के तरीके की मौजूद हैं कि जो दम्मा के साथ, फतहा के साथ और कसरा के साथ भी होंगे, यानी तनवीन नहीं होगी उनके ऊपर, लेकिन वो इस्म के अंदर होंगे। लेकिन जो एक मेजोरिटी है, 85% मेजोरिटी, वो तनवीन चलेगी इस्म में। इसमें जैसे मैंने अभी नाम की एग्जाम्पल आपको दे दी। फिर अगर हम जगह देखें तो जगह में हमारे पास मक्कतु आता है, जो मक्का का नाम है। मक्कतु में कभी भी तनवीन नहीं आती, ये वो लेटर है जो कि तनवीन के बगैर आता है, लेकिन ये इस्म है क्योंकि ये जगह का नाम है, इस वजह से। फिर अगर हम नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें तो सिफ्त हमारे पास आ रही है कि जो सिफ्त का कोई भी सिफ्त है उसको भी हम इस्म की कैटेगरी में लेके आते हैं, जैसे सालिहुन है, खबीरन है, ये जो सिफात है ये सब हमारी इस्म के अंदर आ जाएंगी। फिर इसी तरीके के साथ जो काम है, इसमें जो सबसे लास्ट कैटेगरी मैंने आपको बताई थी वो क्या थी कि जो काम का नाम है वो इस्म होगा। काम का जो नाम है वो इस्म होगा। तो अब इसमें हम डिफरेंस इसमें क्या है कि जब फेल हमारे पास कोई भी आएगा, अगर हम एक फेल की एग्जांपल ले लें, मारना फेल की, तो इसमें हमारे पास जब जमाने के साथ होगा, यानी उसने मारा या वो मारेगा या वो मारता है, तो इन तीनों जुमलों के अंदर हमें कोई ना कोई जमाना मिल रहा है। यानी उसने मारा, पास्ट में मारा, वो मारता है यानी वो प्रेजेंट में मार रहा है, या वो मारेगा, फ्यूचर में मारेगा। तो यहां पर हमारे पास एक काम है और साथ में उस काम का जो करना है वो जमाने के साथ हमारे पास कैद है, यानी उसके अंदर, इस लफ्ज के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमें जमाना भी मिल रहा है। तो ये हमारा फेल के अंदर आएगा। लेकिन अगर हम इस फेल को जमाने के बगैर रखें तो ये क्या हो जाएगा, मारा। तो जो मारा फेल है वो फेल का नाम हो गया, और फेल के नाम के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो मस्तर की इस्तेमाल करते हैं। तो मस्तर फेल का नाम वो भी इस्म के अंदर आएगा क्योंकि उसमें कोई जमाना नहीं है। तो इसलिए इस चीज को आप बिल्कुल क्लियर रखें कि जो फेल है उसमें काम के नाम के साथ साथ उसका जमाना भी स्पेसिफिकली मौजूद होगा, लेकिन इस्म के अंदर वो उस सूरत में आएगा जब उसके अंदर जमाना नहीं होगा, सिर्फ काम का नाम होगा, और उसको हम टर्मिनोलॉजिकली मस्तर कहते हैं। ठीक है, इसमें बर्बुन जैसे मारना जो है, इसको अगर हम अरबी में ट्रांसलेट करें तो बर्बुन ये इस्म की मिसाल के अंदर आ जाएगा। फिर इस्म को और ज्यादा डिटेल में जाने से पहले एक चीज जो हमजा के मुतल्लिक मिस हो गई मुझसे, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे हमने देखा था कि अलिफ वो होता है मस्तर, ये मस्दर है। हाँ जी, मीम, सौद, दाल और रॉ। हाँ जी, मस्तर, एग्जैक्टली। तो इसमें हमजा और अलिफ के मुतालिक एक और पॉइंट मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि अलिफ तो हमने देखा कि जब उसके ऊपर कोई भी हरका नहीं होगी तो वो अलिफ की कैटेगरी में होगा। जैसे ही वो कोई भी हरका ले लेगा अपने ऊपर, फतहा, कसरा, दम्मा या तनवीन या सुकून या कोई भी हरका ले लेगा, तो वो हमजा के अंदर आ जाएगा। अब हमजा को अगर हम और डिटेल के साथ देखें तो हमजा में हमें दो टाइप्स मिलती हैं। मस्तर किसी भी फेल के नाम को बोलते हैं, जैसे मस्तक किसी भी पेड़ के नाम को बोलते हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि फेल के अंदर आपके पास काम भी है और जमाना भी है। जैसे मैं अगर ये कहूं कि मैं खाती हूं, तो मैं खाती हूं यानी मैं प्रेजेंट में खा रही हूं अभी। अगर मैं इस जुमले का इस्तेमाल करूं तो मैं कहूंगी मैं खाती हूं यानी मैं अभी प्रेजेंटली कोई चीज खा रही हूं, तब मैं ये जुमला बोलूंगी। या मैं ये कहूं कि हाँ मैंने लंच कर लिया है यानी मैंने दिन का खाना खा लिया है, तो यानी मैंने पास्ट में एक काम किया है। तो अगर हम इसी फेल को देखें तो इसमें हमारे पास मस्तक क्या है, खाना। खाना क्योंकि इसमें हमारे पास जमाने की कोई कैद नहीं है। अगर हम इसको जमाने की कैद के साथ फिक्स कर दें यानी मैं खाती हूं या मैं खाऊंगी, पास्ट या फ्यूचर के साथ मैं इसको खाने के अमल को कैद कर दूं, तो वो फेल के अंदर चला जाएगा। लेकिन जब आप सिर्फ खाना, कहीं जाना, पीना, इन अल्फाज का मैं सिर्फ इस्तेमाल करूंगी जमाने के बगैर, तो ये मस्तर हो जाएंगे। यानी किसी भी फेल के नाम को हम मस्तर कहते हैं, और जब उस फेल के नाम के साथ आपके पास जमाना भी शामिल हो जाए, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर, तो फिर वो फेल की कैटेगरी में चला जाता है। अगर वो फेल का नाम है यानी मस्तर, तो वो इस्म की कैटेगरी में होगा। अगर वो नाम के साथ साथ, जी बिल्कुल, मस्तर इस्म है और क्योंकि मस्तर के अंदर जमाना नहीं पाया जा रहा, राइट? जब उसके अंदर जमाना पाया जाएगा तो वो फेल की कैटेगरी में चला जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर के साथ आप उसको लिंक कर देंगे, खाने को, पीने को, जाने को, सोने को, तो फिर वो, हाँ जी एग्जैक्टली, टू ईट जैसे मस्तर है। ओके ठीक है, अब हम थे।
जब आप क्लास ले लेंगी तो आप मुझे लगा देंगी वो लैपटॉप में पॉइंट।
फिर इसमें जैसे बस्तर इंशा अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को क्लियर हो गया। तो अब जैसे हमजा के ऊपर थे कि हमजा में मैं आपको एक और चीज डिफाइन करना चाह रही थी कि जब अलिफ के ऊपर कोई भी हरका आ जाती है, फतहा, कसरा या गम्मा, तो वो हमजा के अंदर चला जाता है यानी उसका नाम चेंज हो जाता है। अलिफ कब होगा? जब उसके ऊपर कोई हरकत नहीं है, कोई सकून नहीं है। हमजा कब होगा? जब उसके ऊपर फतहा, कसरा या बम्मा है। तो इसमें जब हमारे पास किसी भी अलिफ के ऊपर फतहा, कसरा या बम्मा होगी तो वो हमजा होगा। और हमजा की फिर आगे दो क्लासिफिकेशंस हैं, ये आप बिल्कुल लिख लें क्योंकि ये आपको आपकी किताब में नहीं मिलेगा, जिसमें हमजा की दो कैटेगरीज हैं, हमजा असली और हमजा वसली। हमजा असली उसको कहते हैं जो हमेशा यानी हम उसकी फतहा, कसरा या दम्मा को पढ़ते हैं और वो दौराने कलाम यानी आप जब उसको पढ़ रहे हैं कुरान मजीद में भी तो वो गिरता नहीं है यानी वो ड्रॉप नहीं होता। और हमजा वसली वो हमजा होता है जो कि ड्रॉप हो जाता है यानी जब आप उसको पढ़ेंगे तो वो ड्रॉप हो जाएगा। इसको असल में हम जब तक किसी आया के अंदर देखेंगे नहीं, हमें ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, हम सूरतुल फातिहा में सबसे पहले देखते हैं। आप लोग अपने मसाहिब खोल लीजिए, जिसके पास नहीं है वो ले आए ताकि हम इसको देख लें कि हमजातुल वसल और हमजा तुल अफल इन दोनों में क्या डिफरेंस है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين. इसमें आप देखें कि रब्बिल आलमीन में जो स्टार्ट में आपको अल मिल रहा है, अलिफ लाम, ये हमजा, ऑलराइट, नॉट अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इयाका इयाका, राइट। آیا نمبر 5 میں آپ دیکھیں ایا کا یہ جو حمزہ ہے یہ آپ کو حمزۃ الاصل ہے. قرآن مجید کھولنے کے لیے ابھی کہا ہے گرامر بک نہیں. حمزۃ الاصل ہے جو آیا نمبر 5 میں ہے ایا کا, کیونکہ آپ اگر اس کو پریویس آیا کے ساتھ ملا کے بھی پڑھے ہیں تب بھی یہ ڈراپ نہیں ہوگا, یعنی مالک یوم الدین ایاک نعبد, حمزہ بالکل ویسے کا ویسا ہی رہے گا. اور اسی طریقے سے وہ ایاک نستعین, یہاں پر بھی جو حمزہ ہے یہ اصلی حمزہ ہے. اور اب آپ دیکھیں الف کی اگر آپ اگزامپل دیکھیں تو ایاک میں جو یا کے بعد آ رہا ہے وہ الف ہے, کیونکہ اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے, اور وہ ایاک نستعین سیم یا کے بعد جو آ رہا ہے وہ الف ہے, اس کے اوپر کوئی حرکہ نہیں ہے. پھر اس کے بعد آیا نمبر 6 کے سٹارٹ میں آپ دیکھیں اہدینا الصراط المستقیم, اہدینا اہدینا میں جو سب سے فرسٹ میں آپ کو الف مل رہا ہے یہ اصل میں کسرہ کے ساتھ ہے, یہ حمزہ ہے لیکن یہ وصلی ہے, اس کو ہم حمزۃ الوصل بولتے ہیں, کیونکہ اگر آپ اس کو پریویس آیا کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ, یہ جو اہدینا کا فرسٹ حمزہ ہے یہ ڈراپ ہو جائے گا, اس لیے کیونکہ یہ اصلی نہیں ہے. مصحف ہے تو مدینہ مصحف میں آپ کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جاتی ہے, کیونکہ مدینہ مصحف میں آپ کو جس بھی الف کے اوپر یا نیچے چھوٹا سا حمزہ لکھا ہوا نظر آئے گا وہ حمزۃ الاصل ہوگا, اور باقی جو لکھا ہوتا تو یہ تھوڑا سا ایسا ہے کہ آہستہ آہستہ جب ہم اور گرامر میں آگے جائیں گے تو پھر ہمیں اس چیز کا زیادہ پتہ چلے گا, اور آپ کو جو تجوید آپ لوگ پڑھ رہے ہیں اس سے بھی آپ کو اس میں حمزۃ الاصل اور وصل کو سمجھنے میں تھوڑی ہیلپ ملے گی. یہ بالکل فوراً فوراً آپ کو نہیں اس میں سمجھ آئے گی, ہو سکتا ہے شروع میں آپ سے مسٹیک ہو, آپ حمزۃ الاصل کو وصل اور وصل کو اصل بنا دیں یعنی مکس کریں آپ ان کو, لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ جب آپ کا گرامر میں بھی علم تھوڑا بڑھے گا اور تجوید میں بھی علم تھوڑا رولز میں آپ کو زیادہ اس کے پتہ چلیں گے تو پھر یہ چیز آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گی. اسی طرح پھر صراط الذین انعمت, انعمت میں جو حمزہ سٹارٹ میں آ رہا ہے وہ حمزہ الاصل ہے, کیونکہ اس کو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں, یہ دوران کلام گرتا نہیں ہے. پھر غیر المغبوبی, اب المغبوبی اگر ہم اس کو اکیلے پہ پڑھیں تو پھر یہ ہم الف پڑھیں گے اس کا, لیکن جب ہم اس کو غیر المغبوبی پڑھیں گے تو الف ڈراپ ہو جائے گا, یعنی یہ والا جو حمزہ ہے یہ حمزہ الوصل ہے. ہاں جی, غیر المغضوب کا حمزہ اصل نہیں ہے وصل ہے, رائٹ. انعمتہ کا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الاصل ہے, ٹھیک ہے. اس میں اب آپ لوگ اپنا ہوم ورک رکھ لیں, چھوٹا سا لکھ لیں کہ جو سورۃ البقرہ کی فرسٹ 5 آیات ہیں اس میں آپ نے حمزۃ الاصل اور وصل اس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور اپنے پاس لکھنا ہے کہ حمزۃ الاصل کون سا ہے اور حمزۃ الوصل کون سا ہے. انشاءاللہ ہم کل کی جو نیکسٹ ہماری ویک منڈے میں کلاس ہوگی اس کے سٹارٹ میں ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے. اب اگر کسی کو حمزۃ الاصل اور وصل میں کوئی ایمبیگوٹی ہو تو کوشچن کر لیں. اور دوسری چیز یہ کہ ہوم ورک میں غلطی کرنے سے آپ لوگ بالکل بھی نہ گھبرائیں, کیونکہ گرامر ایسی چیز ہے جو بندے کو بہت ٹھوکروں کے بعد آتی ہے. یعنی اگر میں اپنا فرسٹ ٹیسٹ یاد کروں تو وہ ایسا تھا کہ اس رزلٹ کو دیکھنے کے بعد میں خود اچھے خاصے ڈپریشن میں چلی گئی تھی, تو یعنی اس کے مارکس بالکل بھی اچھے نہیں تھے. تو آج وہ سب چیزیں اگر میں دیکھوں تو میں کہوں کہ یہ تو اتنی آسان ہے, تو اس لیے آپ ہوم ورک ضرور کریں. غلطی ہو رہی ہے تو بھی کوئی بات نہیں, کیونکہ غلطیوں سے ہی انسان سیکھتا ہے, پرفیکشن پہلے اسٹیپ پہ کبھی بھی نہیں آتی. جیسے ہم بچے کو دیکھیں وہ چلنا شروع کرتا ہے تو شروع میں کتنا گرتا ہے لیکن وہ گیو اپ نہیں کرتا, ٹرائی کرتا رہتا ہے, ٹرائی کرتا رہتا ہے, صحیح کر کے چلنا آ جاتا ہے. तो फर्स्ट 5 आयात आपने हमजतुल असल और वसल की देखनी है कि कौन सा असल है और कौन सा वसल है। और इसमें जो अलिफ है उसमें आप इस चीज को माइंड में रखें, जैसे अगर आप लोगों में से कुछ ने तजवीद को पढ़ा हुआ है तो जो हमारे पास अलिफ मद आती है वो अलिफ की एग्जाम्पल में आपके पास चली जाएगी कि जो भी अलिफ मद है वो आपकी उसको आप अलिफ कहेंगे। और इसके अलावा फिर आपके पास हमजा आ जाते हैं और उसमें फिर कुछ हमजातुल असल होते हैं और कुछ वसल होते हैं। ठीक है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी क्योंकि इसके लिए किसी ने कोई सवाल नहीं किया। शायद हम अब आगे जाते हैं। इस्म को हमने देखा उसकी डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती हैं। हमारे पास किसी भी चीज का नाम, सिफत, जगह का नाम, मस्दर, ये सब चीजें हमारे पास इस्म के अंदर आती हैं। हम इसी को अगर डिटेल के साथ देखें इस्म को, तो एक इस्म मस्दर के लिए आप एक चीज ध्यान में रखें कि जब भी किसी काम के नाम को आप जमाने के बगैर देखेंगे, इसके लिए मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी काम को आप जमाने के बगैर देखेंगे, यानी आपने किसी लफ्ज का मीनिंग देखा लेकिन उसमें आपको ना तो ये मिल रहा है कि वो माजी में हुआ, ना ये मिल रहा है कि वो मुजारे में हुआ, सॉरी फ्यूचर में हुआ, और ना ही ये मिल रहा है कि वो हाल का काम है, तो दैट्स मीन वो मस्दर है। मस्दर फेल के नाम को कहते हैं, और फेल के नाम के साथ जब आपके पास जमाना अटैच हो जाता है तो वो फिर आपका फेल बन जाता है। राइट, अब हम इस्म पे आते हैं। इस्म में हमारे पास अगर हम किसी भी एक लफ्ज को जज करें, एक लफ्ज को, तो उस एक लफ्ज में हमारे पास फेल के नाम सॉरी इस्म हम किसी भी एक लफ्ज को जब देखेंगे ये इस्म है, तो उसके बारे में हमें चार चीजों की क्लैरिटी होनी जरूरी होती है। जैसे अगर हम देखते हैं, दो सेंटेंसेस आप लिख लें उर्दू में। एक लड़के ने हामिद को मारा, एक लड़के ने हामिद को मारा, और दूसरे सेंटेंस में आप लिखें हामिद ने महमूद को मारा। अब हमारे पास ये दो जुमले हैं। पहले जुमले में क्या है कि एक लड़के ने हामिद को मारा, और दूसरे जुमले में है हमारे पास कि हामिद ने महमूद को मारा। अब इन दोनों जुमलों में आपको डिफरेंस क्या मिल रहा होगा कि जो पहला जुमला है उसमें आपके पास एक लड़का है, यानी कोई स्पेसिफिक इंसान नहीं, आपको पता नकेरा है, कोई भी एक लड़का है। तो आपके पास पहले जुमले में आपको क्लियर नहीं है कि एक लड़का कौन सा लड़का है, और दूसरे में हामिद ने महमूद को मारा, यानी दोनों जो लड़के हैं वो हमें बिल्कुल क्लियर पता है कि एक हामिद है और दूसरा महमूद है। तो इस्म के बारे में जो सबसे पहली चीज हमने डिफाइन करनी है वो क्या, कि या तो वो मारिफा होगा, कोई स्पेसिफिक पर्सन है, स्पेसिफिक जगह है, और या फिर वो नकिरा होगा, कोई आम चीज। तो मारिफा और नकिरा, अब मारिफा और नकिरा को जो हम डिस्कस करेंगे तो वो वुसत के अंदर, यानी इस्म को वुसत के लिहाज से जब हम डिस्कस करेंगे तो वो मारिफा और नकिरा उसकी दो टाइप्स होंगी। अब इसमें आपको एक टिप, एक जो छोटा सा नोट है वो आप इसी के साथ लिख लें कि वुसत के अतबार से जब हम इस्म को देख रहे हैं तो मारिफा और नकिरा अरबी जबान में हमारे पास जब भी कोई इस्म तनवीन के साथ आता है, फतहा तनवीन, कसरा तनवीन या बमा तनवीन, तो वो नकिरा के अंदर होता है। कलमुन को ट्रांसलेट करेंगे तो पेन, इंसानुन कोई भी इंसान, किताबुन कोई भी किताब, जब हमारे पास तनवीन के साथ आएगा दैट्स मीन वो नकिरा है। और जब वो अलिफ लाम के साथ इन्हीं अल्फाज को हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कलमुन के बजाय जब हम कह देंगे अल कलम, तो इसका मतलब है कोई खास कलम है जिसके बारे में बात हो रही है। और इसी तरीके के साथ अल किताब, तो कोई खास किताब है, जैसे कुरान मजीद के भी जो डिफरेंट नाम है उनमें हमें पता है कि अल किताब قرآن مجید کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو جب ہم الف لام کے ساتھ کسی بھی اسم کو استعمال کر رہے ہیں تو نسبی مو اسپیسیفک ہے, وہ معرفہ کے اندر ہے. یا آپ ایک چھوٹی سی ٹپ لکھ لیں. بہرحال اس میں آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی قاعدہ پڑھیں گے, کوئی بھی رول ڈسکس کر رہے ہیں, اس کو آپ 100% الفاظ کے اوپر نہ لے کر جائیں کہ اب ہم نے دیکھ لیا جی تنوین ہے تو وہ ایک رول بن گیا, پھر ال ہے تو اب آپ کو ایک لفظ مل رہا ہے مریم, نہ اس کے اوپر مریمو, نہ اس کے اوپر تنوین ہے اور نہ اس کے اوپر الف لام ہے, تو آپ اس کو اسم کی کیٹیگری سے نکال دیں. کیونکہ ہم نے تو پڑھا تھا جی معرفہ الف لام کے ساتھ آتا ہے اور جو نکرہ ہے وہ تنوین کے ساتھ آتا ہے, تو آپ مریموں کو اس کے اندر سے نکال دیں. ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ مریموں بہرحال اسم ہے اور اسم معرفہ ہے, اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن ایک چیز آپ مائنڈ میں رکھیں کہ جو رولز ہیں, رولز جو ہیں ان کو آپ 100% تمام چیزوں کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے لینگویج میں, کیونکہ قواعد ہمارے پاس بعد میں وجود میں آتے اور لینگویج پہلے. تو لینگویج جو ہے وہ پہلے بولی جاتی ہے, اس کے اندر سے پھر قواعد نکالے جاتے ہیں. تو ہر قاعدے کے اندر کوئی نہ کوئی ایکسپشن ضرور ہوتی ہے. تو آپ کو بہت سارے قواعد ایسے ملیں گے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں اس میں تو ایکسپشنز بھی ہیں. تو اس طریقے کے ساتھ اس چیز کو مائنڈ میں رکھیں کہ ہر قاعدے کی ایکسپشن آپ کے پاس, ایکسپشن کے لیے آپ نے ضرور کوئی نہ کوئی ایک کونا رکھنا ہے. تو اس میں ہم تھے اسم کی وسعت کے اعتبار کے ساتھ, ہم دیکھ رہے تھے کہ وسعت کے اعتبار کے ساتھ اس کو دو چیزوں میں ہم تقسیم کریں گے, ایک اسم معرفہ اور ایک اسم نکیر. ٹھیک ہے, پھر اگر میں ایک اور جملہ بولوں کہ دیوار گر گیا, اس جملے کے اندر ایک ہاں جی جو فرسٹ ایگزامپل ہے, ایک لڑکے نے حامد کو مارا, تو اس میں جو ایک لڑکا ہے وہ نکرہ ہے کیونکہ اس کا کوئی نام نہیں پتا ہمیں, کوئی بھی وہ لڑکا ہو سکتا ہے, نکرہ ہے. رائٹ, اب جیسے میں نے ایک جملہ بھی بولا تھا کہ دیوار گر گیا, تو اس سینٹینس کے اندر ایک ایشو ہے اور وہ یہ کہ دیوار جو ہے وہ مذکر ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں, سوری دیوار مؤنث ہوتی ہے اردو میں اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں کہ دیوار گر گئی. تو اب ہمیں کیا پتا چلا اس جملے کے ساتھ کہ اسم جب ہم کوئی استعمال کریں گے تو اس کے ساتھ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے, یعنی اس اسم کو ہم کس طریقے کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. تو یعنی پہلی چیز ہمیں پتا ہونی چاہیے کہ کوئی بھی اسم معرفہ ہے یا نکرہ ہے, اور دوسری چیز ہمیں اس کے بارے میں پتا ہونی چاہیے جنس کے بارے میں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. تیسری چیز جو ہمیں اسم کے بارے میں پتا ہونی چاہیے وہ کیا ہے کہ جو اسم ہم استعمال کریں, یعنی اٹسلف جو ورڈ ہے وہ سنگولر ہے یا پلورل ہے, یعنی عدد کے اعتبار سے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ واحد ہے یا جمع ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز اس عدد کے جو تھرڈ پوائنٹ میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں عدد کا, اس کے نیچے ایک اور چیز آپ ایڈ کر لیں کہ جو عربی گرامر ہے اس میں ہمیں صرف واحد اور جمع نہیں ملتے, یعنی سنگولر اور پلورل تک بات نہیں ہوتی, بلکہ جب بھی آپ کسی ایک چیز کی بات, جیسے الکتاب ہے یا کتابن ہے, تو آپ اس کو کہیں گے کہ یہ ایک کتاب ہے. رائٹ, جب وہ ایک سے دو ہو جائیں گی تو آپ اس کو کہیں گے کتابانی, کتابینی, دو کتابیں. تو وہ واحد اور مثنی, جب آپ کسی بھی اسم کو دو میں بات کریں گے, دو کتابیں, دو ٹیبل, دو چیئرز, دو کی بات ہوگی تو وہ مثنی کی کیٹیگری میں چلے جائے گا, اور جب وہ دو سے زیادہ ہو جائیں گے تو پھر وہ پلورل کی کیٹیگری میں چلے جائیں گے. یعنی عدد کے اعتبار سے اگر ہم ٹائپس دیکھیں تو ہمارے پاس عربی میں کتنی آ گئی, واحد, مثنی اور جمع, یعنی تین ٹائپس ہیں ہمارے پاس جو عربی میں آتی ہیں, جو کہ ہم اگر انگلش میں یا اردو میں دیکھیں تو ہمارے پاس واحد اور جمع کی ہی صرف کیٹیگری ہے, لیکن عربی میں ہمارے پاس تین ہے. ہاں جی, تسمیہ بھی استعمال ہوتا ہے, مثنی بھی استعمال ہوتا ہے, دونوں دو کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اب جو चार चीजें जैसे मैंने आपको बताया था कि इस्म के बारे में हमें क्लियर होनी चाहिए, तो चौथी चीज जो है उसका नाम है एराब, अलिफ आइन रॉ अलिफ बा, इराबुन। इराबुन हमें डिफाइन होना चाहिए किसी भी इस्म का। अब इसमें जैसे हमने जो पहले शुरू में एक जुमला डिफाइन किया था कि हामिद ने महमूद को मारा, जो हामिद ने महमूद को मारा, इसी जुमले को अगर हम देखें तो हामिद ने महमूद को मारा और महमूद ने हामिद को मारा, ये दो जुमले आप लिख लें तरतीब के साथ। पहला जुमला क्या है कि हामिद ने महमूद को मारा, राइट। दूसरे में आप क्या लिखें, महमूद ने हामिद को मारा। अब इन दो जुमलों में आपके पास क्या आ गया कि पहले जुमले में मारने वाला कौन है, हामिद, और मार खाने वाला कौन है, महमूद, और दूसरे सेंटेंस में आपके पास मारने वाला महमूद है और मार खाने वाला हामिद है। अब अगर हम अस्मा की बात करें तो इन दोनों जुमलों के अंदर जो अस्मा है वो बिल्कुल सेम है, हामिद और महमूद ही इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस के अंदर उनका जो स्टेटस है वो चेंज हो रहा है कि पहला जुमला हामिद ने महमूद को मारा, इसमें हामिद फाइल है यानी फेल करने वाला, मारने वाला कौन है, हामिद। सेकंड सेंटेंस में महमूद ने हामिद को मारा, तो जो महमूद है वो मारने वाला है यानी वो फाइल है। तो ये जो स्टेटस की तब्दीली हो रही है दोनों सेंटेंसेस में, ये एराब है, इसको हम एराब कहते हैं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में और ज्यादा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज हम इन चार चीजों का सिर्फ एक जो मोटा मोटा सा इंट्रोडक्शन है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पर एराब जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, तो एराब के लिए हमारे माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है कि हाँ जी, जो जबर है और जो जेर है और जो पेश है वो एराब है। तो यहाँ पर जो टर्मिनोलॉजिकली फोर्थ पॉइंट में एराब की बात हो रही है, ये जबर जेर पेश नहीं है, ये फतहा कसरा दमा नहीं है, बल्कि ये स्टेटस है। इस एराब के साथ आप बल्कि इंग्लिश का स्टेटस वर्ड लिख लें तो आपको ज्यादा क्लैरिटी रहेगी कि जो फाइल है वो आपके पास पहले जुमले में हामिद है और दूसरे जुमले में महमूद है। तो हामिद दूसरे जुमले में मार खाने वाला है और पहले जुमले में हामिद मारने वाला है। तो यहां पर ये जो स्टेटस की चेंजिंग हो रही है ये एराब की वजह से हो रही है, और इसी वजह से हमारे पास जो किसी भी लफ्ज के एंड की हरका है वो चेंज होती है, वो इसी एराब की वजह से होती है। इसको इंशाल्लाह हम जब डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में तो फिर ये आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी आप इसके बारे में एक चीज ध्यान रखें कि जो भी हमारे पास स्टेटस की तब्दीली आती है अस्मा के अंदर वो हम उसको एराब की कैटेगरी में लेके जाते हैं। और हाँ, बस फिलहाल तक आप इतनी चीज को माइंड में रखें। और दूसरी चीज ये कि जो जबर जेर और पेश है, फतहा कसरा दम्मा, ये हमारी एराब नहीं होती, एराब स्टेटस होता है, ये सब चीजें एराब नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ तक इसमें यहाँ तक अगर आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं, कोई चीज़ अगर किसी ने पूछनी है। ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पे हम फिर एंड करते हैं। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ क्लियर है, अच्छी बात है, इब्तिदा हमारी बहुत अच्छी चीज से हुई, इंशाल्लाह अगली क्लासेस में भी सब कुछ क्लियर क्लियर ही होगा। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।